ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నశప్రాయేశ భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతీ ఉత్తమా శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. శ్రీమద్ భాగవతం స్కంద సాత్ అధ్యాయ ఆట శ్లోక్ సంఖ్యా నౌ, సాత్ ఆట్ నౌ. జహి ఆసురం భావం ఇమం త్వం ఆత్మనః సమం మనః తత్స్త్వా న సంతి విద్విషః రితే అజితాత్ ఆత్మనః ఉత్పతే. స్థితా తత్హి హి అనంతస్య మహత్ సమర్హణం. జయ్యాసురం భావమిమం తమాత్మనః, జయ్యాసురం భావమిమం తమాత్మనః. సమం మనోధస్వన సంతి విద్విషః సమం మనోధ్వస్త్వన సంతి విద్విషః రితే జితాదాత్మన ఉత్పతే స్థితాత్ తద్ది అనంతస్య మహి సమర్హణం. తద్ధేయనంతస్య మహత్సమర్హణం. జయ్యాసురం భావమిమం తమాత్మనః, జయ్యాసురం భావమిమం తమాత్మనః. సమం మనోదస్ త్వన్న సంతి విద్విషః సమం మనోద్వస్త్వన సంతి విద్విషః రితే జితాదాత్మన ఉత్పతే స్థితాత్ రితే జితాదాత్మన ఉత్పతే స్థితాత్ తద్దిహ్యనంతస్య మహత్సమర్హణం. తద్దిత్సనంతస్య మహత్సమర్హణం. సత్తనః సమం మనోద్వస్తన సంతి విద్విషః తద్దిహ్యనందస్య మహత్సమర్హణం. నైయాసురం భావం తమాత్మనః మనోద్వాస్వస్తి నిద్విషః. తద్దేయనంతస్య మహత్సమర్హణం. న్యాసురం భావం ఆత్మనః మనోద్వస్తి విద్విషః. తేజితాదాత్మన ఉత్పతిస్థితాత్ తద్దేయనందస్య మహత్సమర్హణం. ఆర్ కోయి మాతాజీస్ జయాసురం భావం ఆత్మనా నిద్విషః. शब्दार्थ इस प्रकार है, जही त्याग दो आसुरम आसुरी भावम प्रकृति को इमम इस त्वम तुम आत्मनः अपने समम बराबर मनः मन दस्त्वा बनाओ ना नहीं संति है विद्विषः शत्रु रिथे के अतिरिक्त अजितात अनियंत्रित आत्मनः मन उत्पते अवांछित प्रवृत्तियों के कुमार्ग पर स्थितात स्थित होकर तत ही वह ही निस्संदेह अनंतस्य असीम भगवान की महत सर्वश्रेष्ठ समर्हणम पूजा विधि. अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जाए. प्रहलाद महाराज ने कहा, हे पिता, आप अपनी असुरी प्रवृत्ति त्याग दो. आप अपने हृदय में शत्रु मित्र में भेदभाव ना लाएं. आप अपने मन को सबों के प्रति समभाव बनाएं. इस संसार में अनियंत्रित यथा तथा पथभ्रष्ट मन के अतिरिक्त कोई शत्रु नहीं है. जब कोई मनुष्य प्रत्येक व्यक्ति को समानता के स्तर पर देखता है, तभी वह भगवान की ठीक से पूजा करने की स्थिति में होता है. तात्पर्य, जब तक मन को भगवान की चरण कमलों में स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक मन को वश में कर पाना असंभव है. जैसा कि अर्जुन भगवद्गीता में कहते हैं, चंचलम ही मन कृष्ण अपमाति बलवदृढ़ तस्याहम निग्रह मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, मन चंचल उड्ढन जिद्दी तथा अत्यंत प्रबल होता है और मेरी समझ में इसे दमित कर पाना वायु को नियंत्रण करने की अपेक्षा अधिक कठिन है। मन को नियंत्रित करने की प्रामाणिक विधि है मन को भगवान की सेवा में स्थिर कर दे। हम अपने मन को आदेश अनुसार शत्रु तथा मित्र बनाते हैं, किंतु वास्तव में ना तो मित्र होता है और ना शत्रु। पंडिता समदर्शिना समम सर्वेश भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। इसे समझना ही भक्ति के राज्य में प्रवेश करने की पहली शर्त है। ओम ज्ञातमिरांदस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामैहं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणलता शाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सुन राधराज प्यारी के चरण कमलों में कुछ भागवत सुनाने का मौका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो अभी ये जो श्लोकों की श्रृंखला के अंतर्गत 7, 8, 9 है, प्रहलाद महाराज के प्रवचन है उनकी पिता के लिए। वैसे हमने अनेकों प्रकार के प्रवचन सुने हैं भागवत में। एक पुत्र माँ को सुनाया देवयुति, लेकिन ये विशेष प्रकार का प्रवचन है। पिता तो असुर है और उनका पुत्र महान भक्त, और जैसे पिता को मालूम पड़ा कि हिरण्यकश्यप को मालूम पड़ा प्रहलाद जो है स्कूल में अन्य बच्चों को भी कृष्ण भक्ति दे रहा है, उनको रहा नहीं गया, बड़ा क्रुद्ध होके एकदम बिल्कुल रोष में आके दुष्ट वचनों को उच्चारण करते हुए प्रहलाद महाराज के पास आके उन्हें कहा कि मेरे जो खाली क्रोध मात्र से सारे देवता लोग कंपित हो जाते हैं, और मेरे क्रोध से तुम डरते तक नहीं, क्योंकि हिरण्यकश्यप जब तलवार लेके आ रहे थे प्रहलाद महाराज के ऊपर, तो उस समय उन्होंने देखा प्रहलाद महाराज एकदम शांति से खड़े हैं, इसलिए हिरण्यकश्यप को और क्रोध आया। ने कहा अतद दैत्य सुता सर्वे, तो ये देखो नारद मुनि ने आगे कहा कि ये जो दैत्य सुता, इन सबको देख के हिरण्यकश्यप ये परिस्थिति को जान के क्या कहता है प्रहलाद महाराज को। भागवत में कहा गया श्री हिरण्यकश्यप उवाच 5वें श्लोक में, हे दुर्विनता मंदात्मन। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद महाराज को डांटना शुरू किया, गाली देना शुरू किया। उन्हें कहा दुर्विनीता मंदात्मन कुलभेद कराधमा स्तब्धम, उन्हें कहा कि मच्चावृत्तम नेशे त्वद्यः यमक्षयम्, आदि आद्य आदि समय तुमको यमक यमलोक में भेजूंगा। और जैसे हिरण्यकश्यप ने इन शब्दों को उच्चारण किया, अपशब्दों को उच्चारण किया प्रहलाद महाराज के प्रति, लेकिन सरस्वती देवी ने उनको अस्यत में स्तुति के रूप में स्वीकार किया। ये श्लोक को तो आपने सुना होगा किस प्रकार मंदात्मन मतलब क्या है, मंद लोगों के प्रति भी वो प्रिय वचन कहने वाले हैं। दुर्विनीता, दुर मतलब दुष्ट लोगों के प्रति भी विनीत भावना रखने वाले, दया रखने वाले। वैसे दुर्विनीता कहा जाए तो दुष्ट दुष्ट व्यक्ति हो जिसके अंदर कोई नम्रता ना हो, लेकिन उसका दूसरा अगर सारस्वत अर्थ लेंगे तो दुर्विनीता मतलब तो दुष्ट लोगों के प्रति विनीत भावना रखने वाले, यानी बहुत सहनशील। ऐसे शब्दों के द्वारा हिरण्यकश्यप तो दुष्ट शब्दों के द्वारा प्रहलाद महाराज को डांट रहे हैं या गाली दे रहे हैं, लेकिन सरस्वती देवी कुछ और अर्थ ले रही है। हिरण्यकश्यप मन में था कि प्रहलाद महाराज को आज ही मार के यमक्षम यमलोक में भेजूंगा। बाद में क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते, हिरण्यकश्यप ने कहा क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते, खाली मेरा क्रोध मात्र से ही सारा जगत कंपित हो जाता है, तो तस्य में अभिमतम मूढ़ा, तुम मूढ़ व्यक्ति हो, बड़े बड़े देवता लोग कंपित हो जाते हैं। शासनम किन बलोत्यगात, शासनम किन बलोत्यगात, तुम कैसे कैसे किस प्रकार के जो शासन है मेरे, जो शासन के अनुसार तुम क्यों नहीं चल रहे हो, किसका बल से तुम इतना निर्भय खड़े हो। और जैसे हिरण्यकश्यप इन शब्दों को कहा, प्रहलाद महाराज ने तुरंत उसका जवाब दिया, किसके बल से तुम इतना निर्भय हो। तुरंत प्रहलाद महाराज ने कहा कि न केवलम ने भरतश्चराजन सवई बलम बलिताम चपरेशाम, केवल तुम्हारा ही नहीं हे राजन, आपका ही बल नहीं मेरा ही बल नहीं, न केवलम में मेरा ही बल नहीं, आपका भी बल उन्हीं से आ रहा है, केवल मेरा और आपका नहीं, कितने भी लोग इस जगत में बलिमताम जितना ही बल दिखाई पड़ता है, परे वरे में स्थिर जंगमाए ब्रह्मादयो ये न वशम प्रणीता, सभी लोग उनके वश में हैं। आपने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था ना, जिन ब्रह्मा जी से वरदान लिया उनका भी बल का स्रोत भगवान श्री कृष्ण। ऐसे प्रहलाद महाराज प्रवचन देते हुए कहा सईश्वर काल रुक्रमोसो, तो कोई और नहीं, वो स्वयं काल है। आप बोल रहे हो ना कि मुझे आप यमक्षयम भेजने वाले हो, वही स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो है वो आपके लिए काल है। वो जहा सह सत्व बले इंद्रियात्मा, जितने भी इंद्रियां हैं ओजस है सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न होता है, बल उन्हीं से उत्पन्न होता है। ऐसा कहते हुए उन्होंने कहा कि आप मुझे मारना चाहते हो, क्यों मारना चाहते हो, क्योंकि तुम विष्णु को शत्रु के रूप में मानते हो। तो ये शत्रु और मित्र के विषय में प्रहलाद महाराज ने तीसरी जगह कह रहे, पहले की दो प्रवचनों में पहले कह चुके हैं शत्रु और मित्र के बीच में भेद जो है यही हमारी मूर्खता है, यही हमारा मोह है। हमारे जीवन में ना शत्रु होता ना कोई मित्र होता है, अस्तित्व में शत्रु कौन है उसका वर्णन इस श्लोक में कह रहे हैं। क्योंकि हिरण्यकश्यप उनका पिताजी, उनका मन में ऐसा बैठा हुआ था जो मेरी बात नहीं मानता है वो मेरा शत्रु है। तो हिरण्यकश्यप को प्रहलाद महाराज अभी समझा रहे हैं, अगर कोई चीज है जो हमारी बात नहीं मानती है वो है मन, मन ही हमारा शत्रु है। हाँ आप सोचते हो कि ये मेरे मित्र हैं और दूसरे लोग जो हैं वो मेरे शत्रु हैं, मैं अपने मित्रों के साथ संभाव रख सकता हूं लेकिन शत्रुओं के साथ मैं संभाव नहीं रख सकता हूं। लेकिन शत्रु है कहां, शत्रु तो है ही नहीं, शत्रु अगर कोई है तो हमारा मन है। तो खास करके जो मन नियंत्रित नहीं है हमारा शत्रु है। अगर जिस किसी का मन नियंत्रित हो गया तो शत्रु है ही नहीं इस व्यक्ति के लिए जगत में किसी का। ये जो सार रूप में प्रहलाद महाराज इस श्लोक में ये कह रहे हैं, सबसे पहला प्रहलाद महाराज ने कहा जही जही मतलब त्याग करो, किसको त्याग करो, आसुरम भावम इमम आत्मनः, आसुरम भावम ये आसुरी भाव को त्याग करो। तो असुरी भाव है क्या, तो वैसे हमने अनेकों प्रकार के असुरी भाव के असुर के गुणों को हमने चर्चा किया था, भगवद गीता में भी है और पिछले श्लोकों में हमने देखा भी होगा असुरी असुर क्या होना है। भगवान का भक्त जो है वो देव है यानी देवा, तद विपर्यः असुरा स्मृताः। जो भगवान श्री कृष्ण को सेवा नहीं करता, भक्त नहीं है, वो असुर है। ऐसा हो ही नहीं सकता जो कृष्ण का भक्त ना हो और अच्छा भी हो ही नहीं सकता। जो कृष्ण का भक्त नहीं है वो असुर है, जो कृष्ण का भक्त है वो असुर है। ये क्लियर कट डेफिनेशन है, क्योंकि शास्त्रों में असुर कौन है, भले उसका गुणों को अनेकों अनेक गुणों को वर्णन किया गया है, दुर्गुण समझिए, गुण नहीं है वो, लेकिन मूल रूप में असुर कौन है, बाय डेफिनेशन असुर वो है जो कृष्ण का भक्त नहीं है, जो कृष्ण का भक्त है जो सुरा। तो प्रश्न आता है कि हम अनेकों अनेकों अच्छे लोगों को देखते हैं लेकिन कृष्ण का भक्त नहीं है, तो इसको कैसे समझे। इसके लिए भागवत में कहा गया है, हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नाशति धावतो बहिः। एक और एक भक्त है जिनके अंदर बहुत सारे अवगुण दिखाई पड़ रहे हैं अभी, लेकिन अवगुण दिखाई पड़ने पर भी, क्योंकि कृष्ण भक्ति अभी कर रहा है, अकिंचन भक्ति कर रहा है, तो उनके अंदर सारे गुण तत्र समासते सुरा, सारे अच्छे गुण जो है वो कुछ ना कुछ समय के बाद प्रकट हो जाते हैं। लेकिन जो कृष्ण का हराव भक्तस्य कुतो महद्गुण, कितना कहा है महद्गुण कहा है जो भक्त नहीं है, क्यों, मनोरते नासति धावतो बहि। मन का रथ के ऊपर बैठे हुए वो क्या कर रहा है, भाग रहा है। जैसे घोड़े के ऊपर बैठ के जब घोड़ा कंट्रोल में नहीं रहता तो कैसे कैसे कहीं कहीं भी लेके जाता है घोड़ा आपको। जो घोड़े ऊपर बैठा है और रथ के ऊपर बैठा है, घोड़े के रथ के ऊपर बैठा है, हमेशा विचलित रहता है। उसी प्रकार जो अनियंत्रित मन है उसके ऊपर जो बैठा है वो कभी शांति से नहीं रह सकता, इसलिए उनके अंदर अभी कुछ अच्छे गुण दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो असुर है। असुर मतलब जिसका मन नियंत्रण में नहीं है और भगवान का भक्त नहीं है। अभी प्रश्न आता है कि जय ही असुरम भावम, फिर असुरम भावम नेक्स्ट कौन सा गुण है जिसका मन नियंत्रण में नहीं है, वो ऐसा कौन सा दुर्गुण है जो सबसे पहला प्रकट होता है। दूसरा दुर्गुण जो प्रकट होता है, भेदभाव, ये मेरा व्यक्ति है ये किसी और का है, ये मेरा मित्र है ये दुश्मन है, ये एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है। असुरी स्वभाव का मूलभूत गुण है कि मन अनियंत्रित रहना, अनकंट्रोल्ड माइंड। लेकिन बाहर से कैसे दिखाई पड़ेगा उसका मन नियंत्रण में है कि नहीं, जब वो व्यवहार करता है, किसी को मित्र समझता है किसी को वो दुश्मन समझता है, कुछ समय के बाद जिसको उन्होंने सोचा कि ये मेरा मित्र है उसको दुश्मन समझने लग जाता है, जिसको उन्होंने सोचा कि ये मेरा दुश्मन है उसको बाद में मित्र समझ लेता है। यानी दूसरे शब्दों में हमेशा उसका मन द्वंद्व में फंसा रहता है, ये मेरा मित्र है और ये मेरा दुश्मन है, ये मेरे पक्ष का है ये विपक्ष का है। ये जो भेदभाव ही हमारा अनियंत्रित मन का लक्षण है और भव बंधन का लक्षण है। जब हम आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं, गुरु से दीक्षा ग्रहण करते हैं, दीक्षा मतलब क्या है, ज्ञान को प्राप्त करना, दिव्यम ज्ञानम दद्यात् इति दीक्षा। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं उसका लक्षण क्या होना चाहिए, जैसे किसी का दीक्षा हुआ उसका लक्षण क्या होना चाहिए, इसके बारे में भगवद्गीता में भगवान ने कहा, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, सब लोग जानते हैं। चौथे अध्याय में भगवान ने यज्ञ के विषय में अनेकों अनेकों विधियों को कहा, अलग अलग प्रकार के यज्ञों को कहा। ने कहा ये तो अलग अलग प्रकार के यज्ञ जो हैं, बहुत लंबा चौड़ा रास्ता है ये ज्ञान को प्राप्त करने की, क्योंकि ज्ञाने परिसमाप्यते सर्वम कर्माखिलम पार्था ज्ञाने परिसमाप्यते। सारे जितने भी यज्ञ के विधि है वेदों में उनका उद्देश्य क्या है, ज्ञान को प्राप्त करना कि मैं भगवान का दास हूं। लेकिन ये ज्ञान को प्राप्त करने का सरल विधि भगवान तुरंत चौथे अध्याय में कहते हैं, क्या कहते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। जो आप एक महान ज्ञानी जो तत्व को दर्शन किया है उनके पास जाके शरण लीजिए और उनके परिप्रश्न कीजिए, उनका सेवा कीजिए, तो ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है। अभी ज्ञान हृदय में प्रकाशित हुआ उसका सिम्टम क्या, उसका लक्षण क्या है, तुरंत भगवद्गीता के इस श्लोक के बाद भगवान कहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य बात यह है कि भक्त ये जो 34th श्लोक है तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवाय उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्व दर्शन, ये श्लोक को तो याद कर लेते हैं लेकिन उसके बाद वाला श्लोक याद नहीं करते हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। तुरंत भगवान ने कहा यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं याश्यसि पांडव येन भूतान अशेषानि द्रक्षस्यात्मन यथो मही। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तद्विधि प्रणिपाते ना याद किया नहीं किया वो अलग बात है, कम से कम उसका जो फलश्रुति है श्रुति फल है या करने का जो फल है वो याद रखना चाहिए। एवं ज्ञात्वा एक बार जान लोगे, एक बार ज्ञान हृदय में प्रकाशित होगा यानी एक बार दीक्षा प्राप्त हो गया तो क्या होना चाहिए, एवं ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं याश्यसि पांडव, वापस मोह में नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आता है भक्त एवं याश्यसि पांडव, येन भूतान अशेषानि जितने भी जीव है जितने भी वस्तुएं हैं, भूतानि मतलब जो उत्पन्न हुआ उसको भूत कहा गया है, वॉट एवर इज एमनेटेड मैनिफेस्टेड इज नोन एज भूत, येन भूतानि अशेषानि चाहे मनुष्य हो प्राणी हो जीव हो वस्तु हो तत्व हो कुछ भी हो या मूलभूत तत्व है पृथ्वी हो जल हो अग्नि हो आकाश हो और स्त्री हो पुरुष हो बच्चा हो बुढ़ा हो ब्रह्मा हो चीटी हो कुछ भी हो, ये न भूता अशेषानी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है अशेषानी द्रक्षसी वो देखता है, द्रक्षसी मतलब देखना, कैसे देखता है आत्मन यथो मही आत्मनि यथो मही आत्मनि, वो सबको आध्यात्मिक स्तर में देखता है। अगर कोई और प्रश्न पूछे अच्छा सबको आध्यात्मिक स्तर में देखने के अर्थ क्या है, मुझे तो भौतिक चीजें दिखाई पड़ रहा है, एक तो कुत्ते का शरीर है एक तो ब्रह्मा का शरीर है एक देवता का, इसमें वेद दिखाई पड़ रहा है, इसको मैं आत्मा के स्तर में कैसे देखूं। अतः अगर समझने के लिए समझाने के लिए भगवान ने कहा दूसरी शब्दों में मई मई शब्द के द्वारा भगवान ने कहा जब भी कोई वस्तु को देखते हो कुछ भी व्यक्ति को देखते हो कुछ भी घटना को देखते हो क्या देखो, ये कृष्ण का है करके देखो, सी इट दैट इट बिलोंग्स टू कृष्णा इट इज कृष्णस। तो तुरंत जैसे ये देखोगे कृष्ण का है तो दुश्मन कहां हो आपका, जो कृष्ण आपका मित्र है और ये कृष्ण का है तो वो व्यक्ति भी आपका मित्र है। अगर आप कृष्ण से प्रेम करते हो कृष्ण के पुत्रों से भी प्रेम करना होगा, कृष्ण की वस्तुओं से भी प्रेम करना होगा। इसलिए जब कोई भक्त कोई भी भौतिक वस्तु को देखता है असुर को भी देखता है तो क्या देखता है, वो भी कृष्ण का है। जैसे प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप को जब देख रहे थे भले ही वो नाना प्रकार का उत्पात मचा रहा था उनको मारने के लिए आ रहा था, प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकश्यप को किस रूप में देखा, अच्छा आप भी कृष्ण के हो आपका बल भी कृष्ण का है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आप जानते नहीं हो। तो जैसे हम लोग किसी को देखते हैं अरे ये तो अभक्त है, अच्छी ऐसा देखना नहीं चाहिए, भले ही वो अभक्त जैसा व्यवहार कर रहा है लेकिन हमको ये देखना चाहिए कि वो भी कृष्ण का भक्त है लेकिन भूल गया है, ये वास्तविक दृष्टिकोण है भक्त का। भगवद्गीता में भागवत में या ईशोपनिषद खोलिए कोई भी शास्त्र खोलिए हर व्यक्ति को समान दृष्टिकोण में देखना उसके विषय में बार 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 बोला जा रहा है। ये जो समभाव जो है इसके बिना भक्ति हो ही नहीं सकता। जैसे भगवद्गीता में भगवान ने कहा ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समम सर्वेश भूतेषु मद भक्तिम लवते कहा। इससे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर आखिरी लाइन में कहते हैं द प्रिलिमिनरी कंडीशन ऑफ एंटरिंग इन टू द किंगडम ऑफ डिवोशनल सर्विस मद भक्तिम लभते, उस व्यक्ति को भक्ति प्राप्त होता है, किसको प्राप्त होता है समम सर्वेश भूतेषु सबको सम दृष्टिकोण से देखता है। आजकल खास करके लोग जब इस्कॉन वालों को देखते हैं हमारे भक्तों को देखते हैं बोलते हैं आप मंदिर में भी भेदभाव करते हो, लाइफ मेंबर लोगों के अलग लाइन, अच्छा जो पैसा देता है वही अभिषेक कर सकता है क्या, लोग हमारे ऊपर आरोप डालते हैं आप भेदभाव करते हो, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि भगवान के संबंध में हरेक व्यक्ति को देखना ही समभाव है। भेदभाव जो है भौतिक स्तर में हो, समभाव जो है भौतिक स्तर में हो ही नहीं सकता। बड़े बड़े दार्शनिक जो है बड़े बड़े वैज्ञानिक हो दार्शनिक हो वो सब इवन नेता लोग जो है वो चाहते हैं कि समाज में समभाव हो सबको समान दृष्टिकोण से देखे, लेकिन उस समान दृष्टिकोण से भौतिक स्तर में समता को देखने के प्रयास कर रहे तो असंभव है। वो भौतिक स्तर में जितना समभाव को देखने का प्रयास करते हैं, भौतिक स्तर में जितना समभाव को लाने का प्रयास करते हैं, वो उतना वो अलग अलग प्रकार के भेदभाव उत्पन्न होते हैं, भेद उत्पन्न होते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा यूनाइटेड नेशंस, वो सब यूनाइट होना चाहते हैं, सब एक होना चाहते हैं, सबको समान देखना चाहते हैं, लेकिन होगा नहीं। क्यों? क्योंकि उनको भक्ति नहीं है। केवल एकमात्र भक्ति है, भक्त है जो सबको समान देख सकता है। क्यों? कृष्ण ही एकमात्र व्यक्ति है जो सबको समान देखते हैं। जब तक हम कृष्ण से नहीं जुड़ेंगे या कृष्ण का भक्ति नहीं करेंगे, वो समदृष्टि हमको प्राप्त नहीं होता है, इम्पॉसिबल। लेकिन लोग ये कहते हैं आपका कृष्ण ही भेदभाव करते हैं, योर कृष्णा हिमसेल्फ इज विषमो यथा। वो देखते हैं कि ये विषम है, विषम मतलब भेदभाव करता है, पक्षपात करता है। ये सातवां स्कंद जो है उसका शुरुआत इसी से हुआ। सम सुहृद ब्रह्मन, सम मित्र सुहृद ब्रह्मन, ब्रह्मन भगवान जो है, हे ब्राह्मण सुनो, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी कहा हमारा भगवान जो है वो कैसे होना चाहिए? सबके प्रति समान होना चाहिए और सबसे प्रेम करना चाहिए और सबसे मित्रता होना चाहिए। लेकिन ये देखा गया है ये असुरों के प्रति द्वेष करते हैं और असुरों के प्रति दुश्मनी रखते हैं और असुरों को वो प्रति भेदभाव करते हैं, यानी ये जो उनके भक्त हैं उनको तो देखभाल करते हैं, असुरों को मार देते हैं। उसका बहुत सुंदर जवाब दिया गया है। क्या वो एक उदाहरण दिया गया है किस प्रकार भगवान भेदभाव नहीं करते, सबको समान देखते हैं। लेकिन भगवान के अंदर ये भेदभाव है करके लोग क्यों देखते हैं? क्योंकि उनके अनुभव की वजह से देखते हैं। क्योंकि कृष्ण को एक ही चीज मालूम है, सबको उद्धार करना, सबको कल्याण करने के अलावा और उनको कोई चीज मालूम ही नहीं है। एक बहुत सुंदर उदाहरण है, उदाहरण है सूर्य का। सूर्य जो है वो सबको समान प्रकाश देते हैं, लेकिन एक व्यक्ति सूर्य को दुश्मन मानता है। वैसे सूर्य का एक नाम है मित्र, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र मित्र, यम ब्रह्मा मित्र वरुणेन्द्र, वरुणेन्द्र मित्र, कि सूर्य का नाम है मित्र क्योंकि सबके मित्र है। होने पर भी चोर जो है सूर्य को दुश्मन मानता है। क्यों? क्योंकि रात के समय चोरी कर सकता है, जैसे सूर्योदय हुआ चोरी नहीं कर सकता, यह पकड़ा जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए चोर के लिए सूर्य मित्र है और एक सज्जन व्यक्ति के लिए, चोर के लिए सूर्य जो दुश्मन है और एक सज्जन व्यक्ति के लिए सूर्य कौन है? वो मित्र है। और जो अंधा होता है वो सूर्य हो ना हो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सूर्य से कुछ लेना देना नहीं होता है। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण जो है असुरों के लिए कृष्ण कौन है? दुश्मन है। लेकिन कृष्ण के लिए असुर दुश्मन नहीं है, है कि नहीं? कभी कभी भक्त लोग कहते हैं प्रभु जी जो अच्छे भक्त होते हैं ना, मित्र होते हैं ना, उनके तो ठीक है, लेकिन ये तो मेरे से द्वेष करता है, उसके साथ कैसे समभाव रखे? तो ये सीखना चाहिए। वो आपसे व्यक्ति कोई द्वेष कर सकता है, आपसे व्यक्ति कोई शत्रुता कर सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि अगर वो आपका शत्रु बने आप भी उनका शत्रु बने, ये कोई जरूरी नहीं है। ये कृष्ण से कला सीखना चाहिए और ये सूर्य से भी कला सीखना चाहिए। भले ही आपको कोई दुश्मन मान सकता है, लेकिन आपको ये जरूरी नहीं कि उनको भी दुश्मन के रूप में देखे, ये जरूरी नहीं उस व्यक्ति को भी ऐसी प्रकार व्यवहार करे जो आपसे व्यवहार करता है, ये कोई जरूरी नहीं है। ये प्रकृति में सूर्य से सीख सकते हैं, भगवान से कृष्ण से सीख सकते हैं। क्योंकि भक्त को केवल एक ही चीज मालूम है, उपकार करना। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं समहा, क्या कहा ना दूसरे शब्द में कहा, समम मनो द्वष्ट न संति विद्विषः, न संति विद्विषः। देखो कोई आपका दुश्मन नहीं है, अस्तित्व में हर एक व्यक्ति आपका मित्र है, लेकिन आप देखते हो ये दुश्मन है, आप देखते हो व्यक्ति मित्र है। क्यों? आपका मन नियंत्रण में नहीं है। हमारे मन में जो इच्छा होती है उस इच्छा को पूर्ण करने वाले को अपने मैं अपना मित्र मानता हूं, जो मेरी इच्छाओं के बीच में रुकावट पहुंचाने वालों को मेरा अपना दुश्मन मानता हूं। लेकिन कुछ समय के बाद अगर कोई वही व्यक्ति जो आपका जिसको आपने दुश्मन माना आपकी बात मान लिया आपकी इच्छा को पूर्ण किया तो बोलोगे मेरा मित्र है। अस्तित्व में इस जगत में कोई भी हमारा न मित्र है न मेरा दुश्मन है। जो हमारी इच्छा को पूर्ण करता है उसको मित्र मानता हूं, जो हमारी इच्छा को पूरा नहीं करता है उसको मैं अपना दुश्मन मानता हूं। इतर को इच्छा को पूरा करने वाला मित्र है, इच्छा को रुकावट पहुंचाने वाला वो कौन है? मेरा दुश्मन है। अस्तित्व में ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसा कौन सा चीज है जो हमारी बात नहीं सुनती? वो है हमारा मन। लोग सोचते हैं ये मेरा दुश्मन है क्योंकि मेरा बात नहीं सुनता है। सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारे अंदर ही बैठा है। कौन? मेरा मन। क्या हमारा मन हमारा बात सुनता है? नहीं सुनता है। मैं पढ़ना चाहता हूं लेकिन मन कहता है कुछ और कहो। मैं कुछ करना चाहता हूं, मेरा मन कहीं और भागता है। प्रहलाद महाराज ने यही कहा, रितेजिताद और रितेज, मतलब इसको छोड़ के, किसको छोड़ के? आत्मनः उत्पते स्थिताः। जो मन है, ये आत्मना मतलब मन, भगवद गीता में भगवान ने इसको स्पष्ट रूप में कह दिया, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। जो आत्मा को प्राप्त कर चुका है, कंट्रोल कर चुका है, वो निश्चित रूप में परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। लेकिन जो आत्मा को नियंत्रण नहीं किया है, आत्मानस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्, अनात्मानस्तु शत्रुत्वे, कौन शत्रु है? जो आपने अपने मन को नियंत्रण नहीं किया वो ही मन है जो आपका दुश्मन है। तो प्रश्न आया है, तद ही अनंतस्य महत समर्हणम। आखिरी लाइन में यह आया है कि तद ही क्या करो आप, दही मतलब क्या करो, ही तद ही अनंतस्य, अनंतस्य का अर्थ है इधर भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण का क्या करो? महत समर्हणम। प्रहलाद महाराज अपने पिता हिरण्यकश्यपु बहुत दुष्ट भाव में मारने के लिए आ रहे, लेकिन फिर भी प्रचार नहीं छोड़ा। ने कहा क्या करो आप? महत समर्हणम, बहुत ऊंचे प्रकार का भक्ति करो, टॉप मोस्ट भक्ति करो, शुद्ध भक्ति करो। तो प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्ति से कम शिक्षा नहीं दे रहे हैं। ठीक है, भगवान से जाके प्रार्थना करो, ठीक है आपका इच्छा पूरा कर देंगे, ये सब चीजें नहीं कहा। प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यप मारने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उस समय प्रहलाद महाराज ने कहा महत समर्हणम, द बेस्ट समर्हणम, बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप। क्या है वो सबसे ऊंचे प्रकार का भक्ति? क्या है शुद्ध भक्ति? क्या है जो सबको समभाव से देखते हुए भक्ति करना। भले ही भागवत में हमको अलग अलग प्रकार के भक्त प्राप्त होते हैं, दक्ष जैसे भक्त प्राप्त होते हैं, और ध्रुव महाराज जो है उन्होंने राजसिक भक्ति किया, दक्ष ने तामसिक किया, और पृथु महाराज ने सात्विक किया। चौथे स्कंद में तीन प्रकार के ये जो भक्त है, सात्विक राजसिक तामसिक, तीन प्रकार के भक्ति का वर्णन हुआ तीन लीलाओं के द्वारा। लेकिन भगवान शिवजी ने क्या किया, प्रचेताओं को शुद्ध भक्ति का ज्ञान प्रदान किया चौथे स्कंद में, क्योंकि तीसरे स्कंद में कपिल मुनि ने कहा अलग अलग प्रकार के भक्ति हो सकता है, सात्विक राजसिक तमसिक और शुद्ध भक्ति जो दिव्य है। लीडर महत समर्हणम के द्वारा प्रहलाद महाराज कहते हैं आप शुद्ध भक्ति करो। शुद्ध भक्ति का पहला स्टेप है सबको समभाव से देखना। एक लीला याद आती है, एक बार श्रील प्रभुपाद जी गाड़ी में जा रहे थे, आगे बैठे थे ड्राइवर के बाजू में, और पीछे उनके भक्त इससे साथ साथ में जा रहे थे। लेकिन वो गाड़ी निकल रहा था, कहां निकल रहा था? एक ऐसे रोड पे जो आजू बाजू में बहुत पाप कार्य चलने वाले क्लब है, पब है, सब थे, और रास्ते में भी लोग जो है नशा करके अनेकों अनेकों प्रकार के दुष्ट कार्य कर रहे थे, पाप कार्य कर रहे थे। तो ये भक्तों ने आजू बाजू देख के प्रभुपाद जी को अपने आप में बात कर रहे थे, और प्रभुपाद जी को कहने लगे, प्रभुपाद ये सिंपल पीपल, कहा कि पापी लोग ये लोग। प्रभुपाद चुपचाप बैठे, पीछे मुड़ के देखे, थोड़ा देर चुप हो गए, चुप होके देखने लगे प्रभुपाद जी क्यों कुछ बोल नहीं रहे, हम तो बोल रहे हैं सब पापी बोल रहे हैं इन लोगों को। तो पूरा गाड़ी भर तो कुछ नहीं बोला, वो भी चुप हो गए, क्योंकि प्रभुपाद जी खाली दृष्टि मात्र से पीछे मुड़ के देखे और कुछ नहीं किया। तो सब लोग चुप हो गए। तो गाड़ी जहां जाना था उतर का उधर रुका, प्रभुपाद जी नीचे उतरे और सारे भक्त लोग नीचे उतरे तो पूरा मामला बहुत टेंशन में था, बहुत तो प्रभुपाद ने उनकी ओर देखा, दे आर ऑल इनोसेंट। तो उधर एक भक्त कहते हैं उनके प्रभुपाद जैसे चीजों ने इस घटना को लिखा, मुझे याद नहीं किसका नाम है, उसने कहा प्रभुपाद जी जब हमको देखे हमको पता लग गया हम भी तो ऐसे ही थे, और अभी तो भक्ति को स्वीकार किया, जप करना शुरू किया, प्रसाद खाना शुरू किया, तो बोले वो सिंपल हो गए और हम अच्छे हो गए अचानक। तो प्रभुपाद का दृष्टिकोण क्या था, जब उन लोगों को देखते थे, इन हिप्पियों को देखते थे, पापियों को देखते थे, क्या उन्होंने देखा, किस रूप में देखा, दे आर इनोसेंट। असत में प्रभुपाद जी सबको कृष्ण के भक्त के रूप में देखते थे, दी आर सीइंग एवरीबडी एज अ सर्वेंट ऑफ कृष्ण। लेकिन कुछ लोग याद करते हैं, कुछ लोग उसको भूल जाते हैं। तो ये समभाव अति महत्वपूर्ण चीज है। तो कोई प्रश्न उठा सकता है कि प्रभु जी ये तो कहना जो है ना, प्रवचन देना बहुत आसान बात है कि सबके साथ समभाव रखो, और बोलना तो श्लोकों को बोलना तो और आसान बात है क्योंकि अलग अलग जगह बताया हुआ है, लेकिन इसको उत्पन्न कैसे करें, उसको कैसे डेवलप करें, हाउ टू डू दैट, ये प्राय भक्त प्रश्न पूछते हैं। क्योंकि अगर कोई मुझसे मित्रता करता है, इफ समबडी इज माई फ्रेंड, उसके प्रति मित्रता करना ये स्वभाव है, इसके साथ अच्छा व्यवहार मैं कर सकता हूं। अगर मान लो मेरा कोई दुश्मन है, उसके साथ कैसे मित्रता बनाऊं, उसके साथ मैं कैसे समभाव कैसे बना के रखूं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भक्त पूछते हैं। और हमारे मन में भी ये बार बार आता है, हाउ टू डू इट, कैसे करें, हाउ कैन बी इक्वल टू एवरी वन। इसका कोई और रास्ता नहीं है, जब तक हम जितना कृष्ण के भजन करेंगे, शुद्ध भक्ति करेंगे, उतना हमारा ये समभाव प्राप्त होता है। जितना हम शास्त्रों को पढ़ेंगे उतना हमको ये समभाव समदृष्टि प्राप्त होता है। क्यों, हर जगह कृष्ण दिखाई पड़ते हैं उस व्यक्ति को, हर जगह जो है कृष्ण के साथ संबंध दिखता है उस व्यक्ति का और वस्तु का। एक है भौतिकवादी, भौतिकवादी क्या है, भगवान की शक्तियों को देखता है। एक है आध्यात्मिकवादी, वो क्या करता है, शक्तियों में भी भगवान को देखता है। जब तक हर वस्तु में, हर प्रसंग में, हर चीज में भगवान का दर्शन नहीं होता है, तब तक ये असंभव है। तो आप बताओगे साधना के स्तर में कैसे किया जाए, वो तो उत्तम अधिकारी का स्तर है, लेकिन साधक या मध्यम अधिकारी है, कनिष्ठ अधिकारी है, वो कैसे करे, खास करके मध्यम अधिकारी कैसे करे। मध्यम अधिकारी के लक्षणों में वर्णन किया गया है, जो भेद को देखता है भगवान में, जो नास्तिक होते हैं या द्वेष करते हैं भगवान में उसमें, जो मासूम होते हैं उनमें, और जो भक्त होते हैं, इन चारों में भेद देखता है, कृपा मैत्री उपेक्षा ये सब चीजें करने लग जाता है। तो ये भेद को देखना और साथ साथ में समभाव को देखना, ये हमारा बुद्धि का कार्य है। जितना हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, जितना हमारी साधना बहुत तेज रहेगी, भगवान हमको ऐसा बुद्धि देते जिसके द्वारा हम समभाव को बना के रख सकते हैं, और साथ साथ में ऐसा भेद को बना के रख सकते हैं जिसके द्वारा हमारा समभाव जो है वो उसके अंदर कोई टूटी ना हो। तो ये प्रहलाद महाराज का शिक्षाओं के अनुसार हमने आज कुछ बातों को सीखा। आज जो है श्रील ईश्वरपुरी पाद का तिरुभाव दिवस है, मैंने सोचा कि ईश्वरपुरी पाद के विषय में थोड़ा सा हम चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि ईश्वरपुरी पाद श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु है। श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु है माधवेंद्र पुरीपाद, और उनके गुरु है ईश्वरपुरी। हमारे संप्रदाय में जो प्रेम के लक्षणों को प्रकाशित करने वाले सबसे पहले है माधवेंद्रपुरी। चैतन्य महाप्रभु जो प्रदान करने के लिए आए, अनर्पित चरिम चिरात कारुण्यावतीर्ण कलो समर्पितम उन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम, तो उन्नत उज्ज्वल रस का आभा के रूप में लक्षणों को सबसे पहला श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने प्रकाशित किया। तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के शिष्य है ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी के रूप में हमारे संप्रदाय या प्रेम जो है अंकुरित हुआ। पहले जो है बीज के रूप में माधवेंद्रपुरी, उसके बाद जो ईश्वरपुरी के रूप में जब ईश्वर पूरी रूप में ये जो प्रेम है वो अंकुरित हुआ। अंकुरित होने के बाद चैतन्य महाप्रभु रूप में क्या हुआ, वो वही प्रेम जो है एक वृक्ष के रूप में प्रकट हुआ। तो सबसे पहला श्री चैतन्य महाप्रभु और ईश्वरपुरी का मुलाकात हुआ था कहां, नवद्वीप में। तो नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु अनेकों अनेकों लीला कर रहे थे। लीला करते हुए एक दिन ईश्वरपुरी पाद वो आए श्री अद्वैताचार्य के घर में। अद्वैताचार्य जो है बहुत ही उस समय महान वैष्णव थे। तो हम वो प्रसंग पढ़ेंगे मध्यलीला चैतन्य भागवत से, जब ईश्वरपुरी प्रवेश किए नवद्वीप में। ये आता है 11वां अध्याय में, सॉरी आदिकंड का 11वां अध्याय का 70वां श्लोक से ये शुरू होता है। हेन काले नवद्वीप श्रीश्वरपुरी आयलना अति अलक्षित वेशधरी। बहुत अलक्षित वेश को धारण करते हुए, लक्षित वेश मतलब क्या है, जो सन्यासी है लेकिन छंद रूप में अपने आप को ढकते हुए, क्योंकि सब लोगों को मालूम पड़ेगा कि मैं सन्यासी हूं, सब लोग प्रणाम करने लग जाएंगे, लेकिन उनको तीव्र इच्छा था मैं कैसे भी करके जाके निमाय का दर्शन करूं, निमाय का कृपा प्राप्त करूं। इस भाव से पहुंचे नवद्वीप। कृष्ण रसे परम विह्वल महाशाई, कृष्ण रस का आस्वादन करने में परम विह्वल, विह्वल मतलब क्या है, अचंभित हो जाना। जैसे कृष्ण का स्मरण करते तुरंत अचंभित हो जाते हैं। एकांत कृष्ण प्रिय अति दयामय, और बहुत दयामय है और कृष्ण के अति प्रिय है ईश्वर प्रीपाद। तानवेश तान कहे चिंता ना पारे, चिंते ना पारे दैवी गिया उथिलेनो अद्वैत मंदिरे। कोई समझ नहीं पा रहा था कौन है ईश्वरपुरी, वो सीधा पहुंचे अद्वैत मंदिरे, अद्वैत आचार्य के घर में पहुंचे। और अद्वैत आचार्य के घर में पहुंच के वो बड़े नम्रता के साथ एकानि अद्वैत सेवा करेनो विषय वसिया सन्मुखे वसीला बड़ा संकुचित हैला। जब अद्वैत आचार्य के पास जाके वो पूजा करने लगे बड़े नम्रता से, तो ये अद्वैत आचार्य देखने लगे ये कौन है भाई, ये तो बड़ा परम वैष्णव है। वैष्णव रतेजी वैष्णवते न लुखाया, तो ये साधारण व्यक्ति नहीं है, बड़ा वैष्णव, महान वैष्णव है। पुनः पुनः द्वैत पाने छाया, तो अद्वैत आचार्य जो है बार बार देखने लगे, ये वैसे वैसे दिखाई नहीं पड़ रहा, साधारण व्यक्ति दिखाई पड़ रहा लेकिन है नहीं, ये महान वैष्णव है, क्योंकि उनके मन में इनके चेहरे से बहुत अद्भुत तेज उत्पन्न हो रहा है। बोले नो तो पूछने लगे, अद्वैत आचार्य ने पूछा आप कौन हो। अद्वैत बोला न बापा तुम्हें कोनो जन, आप कौन बताइए। वैष्णव सन्यासी तुम्हें है न लय मन, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप महान एक वैष्णव सन्यासी हो। जैसे अद्वैत आचार्य ने इस प्रकार पूछा, ईश्वरपुरी ने कहा बड़े नम्रता से, देखिए भगवान के गुरु है चैतन्य महाप्रभु गुरु, कहते हैं बोले न ईश्वरपुरी अमी शूद्राधम, तुमने कहा मैं शूद्राधम हूं। देखी बारे आयलन तुम्हारा चरण, मैं आपका चरण का दर्शन करने के लिए मैं आया हूँ। बुजिया मुकुंद एक कृष्ण चरित्र गायते लगीरा प्रेम रसहित। तो तुरंत मुकुंद ने देखा, ये पूरा जिसको देखे तुरंत कृष्ण का चरित्र को गान करने लगे, कृष्ण कथा को गान करने लगे। और जैसे मुकुंद का गाय हुआ कृष्ण गीत, कृष्ण नाम कृष्ण कथा, जैसे ईश्वर पूर्वी के कान में प्रवेश किया तो तुरंत क्या हुआ, नयन जल अंत नहीं का तहारा, उनकी आंखों में से जल का कोई प्रवाह कोई अंत नहीं था। पुनः पुनः बड़ा प्रेम धरा पयान, उनके हृदय में अनेक अनेक प्रकार के प्रेम के तरंग उत्पन्न होने लगे। तो अद्वैताचार्य तुरंत ईश्वरपुरी को अपने गोद में बिठाया और उनके आंखों की जो आंसुओं के प्रवाह के द्वारा पूरा अद्वैताचार्य का जो पूरा शरीर गीला हो गया। ये इस प्रकार के जो प्रेम के लक्षणों को देख के जितने भी अन्य जितने वैष्णव थे सब अचंभित हो गए। ईश्वरपुरी इस प्रकार रोज अद्वैताचार्य के घर में आना, इस प्रकार कृष्ण कथा को श्रवण करना, अनेकों अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ, दैवी एको दिनो प्रभु श्री गौरचंद्र पड़ियापनराघरा। तो गौरचंद्र जो है अपनी पाठशाला से वापस घर में आ रहे थे, उस समय निमाई पंडित के रूप में बड़ा प्रसिद्ध है श्री चैतन्य महाप्रभु। पाठ देखी होयला ईश्वरपुरी सारे, तो सी तुरंत ईश्वरपुरी को दर्शन करते ही तुरंत क्या किया महाप्रभु ने, तुरंत उन्होंने दंडवत किया। तो ये विश्वम्भर श्री चैतन्य महाप्रभु का सुंदरता को देख के ईश्वरपुरी एकदम बिल्कुल अचंभित हो गया। ईश्वरपुरी तो उधर देख रहे चैतन्य महाप्रभु, प्रणाम किया, अचंभित हुए है। तो ईश्वरपुरी ने निमाय पंडित के इस प्रकार के अद्भुत रूप को देख के एकदम अचंभित हो गया। ईश्वरपुरी ने पूछा जिज्ञासिया तुम्हारा की नाम विप्रवर, तो ने पूछा कि आप ये विप्रवर आपका नाम क्या है बताइए। कि पुनीते पदा पड़ाओ पद कौन स्थान घरे, आप घर कहाँ है, आप कहाँ से कहाँ पढ़ाते हो। इस प्रकार जैसे ईश्वरपुरी ने पूछा शेष सब बोले नो निमाय पंडित तुम्ही से बुलाइए बड़ा होइल हर्षित। तो निमाय पंडित भी एकदम बिल्कुल ईश्वरपुरी को देख के क्या बोले, इनका परिचय थोड़ी ना देंगे। तो बाकी अन्य लोग देखने का ये तो इनका नाम निमाय पंडित है, और निमाय पंडित का नाम सुनते ही तुरंत चैतन्य महाप्रभु ने कहा ईश्वरपुरी एकदम अचंभित हो गए। अन्य लोगों ने कहा कि निमाय पंडित है, तब निमाय पंडित चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरी कहा आप हमारे घर में आइए भोजन ग्रहण कीजिए। कृष्णेर नैवेद्य सचि करी न गया भिक्षा करी विष्णु गृह वसी आशिला। तो ईश्वरपुरी को भिक्षा प्रदान किया और ईश्वरपुरी उधर जाके विष्णु मंदिर मतलब घर में जो उनका निवास भगवान का स्थान था उस घर में उनको रुकाया। और ईश्वरपुरी पाद पूर्ण तरीके से कृष्ण कथा का श्रवण में एकदम बिल्कुल मग्न हो गए। ईश्वरपुरी कुछ समय कुछ दिन के लिए नवद्वीप में रह गए और गोपीनाथ आचार्य के घर में रुके। और इस प्रकार इस ऐसी लीला चल रही थी। एक दिन क्या हुआ कि ईश्वरीपुरी पाद ने एक ग्रंथ का रचना किया जिसका नाम है कृष्ण लीलामृत। ये कृष्ण लीलामृत को उन्होंने लिखा और गदाधर पंडित को उन्होंने सुनाया। और इस प्रकार चल रहा था तो एक दिन निमाय पंडित है महान पंडित ईश्वरपुरी पाद ने चैतन्य महाप्रभु को दिया, निमाय पंडित को दिया, आप उसके अंदर कुछ दोष है तो आप उसको बताइए। तो ने कहा कि उस ग्रंथ में कैसे दोष हो सकता है, आप तो महान हैं लेकिन फिर भी आपने दिया तो मैं लेके जाऊंगा। तब सुनिया ईश्वरपुरी प्रभुरा उत्तर अमृत संचित होइला सर्व कलेवर। तो जैसे ईश्वरपुरी ने इस बात को सुना तो क्या हुआ उनके हृदय में अमृत का एक प्रकार का कृष्ण कथामृत का जो भक्त लक्षण है वो सब प्रकट होने लगे। तो दो घंटे तक ईश्वरपुरी और श्री चैतन्य महाप्रभु इस ग्रंथ के विषय में चर्चा किए। चर्चा करने के बाद अगले दिन आके चैतन्य महाप्रभु ने कहा इसके अंदर ये थोड़ा सा दोष है, उसका टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे। लेकिन बाद में ईश्वरपुरी ने कहा नहीं ये दोष नहीं, ये सही बात है, इसके ये शब्द जो है इस प्रकार की इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ईश्वरपुरी ने बाद में इस प्रकार का चैतन्य महाप्रभु ने निमाय पंडित ने इसको स्वीकार कर लिया। और माधवेंद्रपुरी का शिष्य ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु रोज दर्शन करते हुए नवद्वीप में अनेकों समय तक रहे और रोज चैतन्य महाप्रभु घर में आके भिक्षा मांगते थे और चंद्रशेखर आचार्य का घर में वो निवास करते थे। अभी बात यह है कि दूसरी बार श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी का मुलाकात हुआ था कहां, गया में, गया क्षेत्र में। आप सबको मालूम है श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो गया गए थे अपने पिताजी का श्राद्ध करने के लिए। जब श्राद्ध करने के लिए जब गए विष्णु उपाधि गया में उनका मुलाकात हुआ किसके साथ, ईश्वरपुरी के साथ। ईश्वरपुरी के साथ जब मुलाकात हुआ एक दिन क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु रोज अलग अलग प्रकार की जो गया है, युधिष्ठिर गया है, भीम गया है, उन सारे जगहों के जाके वो शाम को आके वो प्रसाद बना रहे थे। उसी समय क्या हुआ, ईश्वरपुरी पाद पहुंच गए। जैसे पहुंच गए जो भी प्रसाद तो अकेले के लिए बनाए थे, तुरंत चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, वो सारा जितना ये प्रसाद है ईश्वरीपुरी पाद पर अर्पण कर दिया। तो ईश्वरपुरी ने कहा अरे हम दोनों बैठ के खाएंगे, पूरा क्यों खा रहे हो, वह पूरा क्यों मुझे दे रहे हो, हम दोनों बैठ के लेंगे। तो महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं नहीं, पूरा आप ही ले लो। तो जैसे ईश्वर पुराणनाथ ने सुना, ईश्वर ने कहा तुम क्या खाओगे, मैं वापस बनाऊंगा। और जैसे महाप्रभु अंदर गए, ऐसा वर्णन आता है किस प्रकार साक्षात लक्ष्मी स्वयं आके तुरंत उन्होंने पूरा भोजन तैयार कर लिया। इस प्रकार ईश्वरपुरी और श्री चैतन्य महाप्रभु दोनों ने प्रसाद ग्रहण किया। तो ऐसा आखिरी में ये बात वर्णन आता है, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। ईश्वरपुरी संगे प्रभुर भोजन इहारा श्रवण मिले कृष्ण प्रेम धन। जो व्यक्ति ईश्वरपुरी और चैतन्य महाप्रभु का जो भोजन ग्रहण करने का लीला को श्रवण करता है उसको प्रेम धन प्राप्त होता है। तबे प्रभु ईश्वरपुरी सर्वांग ईश्वरपुरी रा सर्वांगे अपना श्रीहस्ते लेपिया दिव्य गंधे। तब चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, स्वयं अपनी हाथों से ईश्वरपुरी का शरीर का जो दिव्य शरीर है उधर उनको चंदन से लेपन किया। यथ प्रति ईश्वर ईश्वरपुरी रे तथा वर्णी बारे कोनो जना शक्ति धरे। इस प्रकार ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु का जो मिलन है, किसके पास शक्ति है उसका वर्णन करने का, किसी के पास शक्ति नहीं है। अपना ईश्वर अपने ईश्वर श्री चैतन्य भगवान देख ले ईश्वरपुरी का जन्म स्थान। उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी का जन्म स्थान में पहुंचे। और किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी के जन्म स्थान में जाके कुमार हट्टा उन्हें क्या दिव्य भक्ति को ने प्रकाशित किया, उसका वर्णन जो है इधर किया जा रहा है। उस समय क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु जो है ईश्वरपुरी के पास जाके उन्हें कहा कि मुझे आप दीक्षा दीजिए। आर दिने निवृत ईश्वरपुरी स्थाने, चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी स्थान में गए, उनके घर में गए। मंत दीक्षा चाइन मधुर वचने, बहुत मधुर वचन के साथ। देखिए दीक्षा लेने का भी तरीका है, मधुर वचन के साथ उन्हें गुरु के पास जाकर कहा हमको मुझे दीक्षा प्रदान कीजिए। पूरी बोले मंत्र वल्ल कोन कथा परम प्रणाम अमी दीते पारे तुम्हारे सर्वत्र। तो ईश्वर पूर्णिम बाद ने कहा प्राण आप मंत्र की बात कह रहे हो, मंत्र देने की बात तो छोड़िए, मैं तो पूरा अपना प्राण देने के लिए तैयार हूं आपको। तबे प्रभु प्रदक्षिणा करिए पुरीरा, प्रभु कहे देहामी दिलायनो तुम्हारे। तब ईश्वरपुरी का प्रदक्षिण किए और चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं आपका पूर्ण शरणागत हूं। हे न शुभ दृष्टि तुम्ही करे अमारे, हे न अमी भाष्य कृष्ण प्रेमेरा सागरे। तो महाप्रभु ने कहा आपकी जो कृपा दृष्टि से मुझे कृष्ण प्रेम का सागर में आप डुबाइए। सुनिए प्रभु रा वाक्य श्री ईश्वरपुरी प्रभु रे दिलन आलिंगन वक्ष धरी। तुरंत ही बात सुन के ईश्वरपुरी ने महाप्रभु को आलिंगन किया। दुहारा नयने जल दुहारा शरीर, दोनों का जो नयनों से उत्पन्न हुआ जो आश्रों का धार दोनों के शरीर में गिर पड़ा और दोनों का शरीर को गीला कर दिया। हे नमत ईश्वरपुरी कृपा करी कत दिन गया रही गौर हरी। इस प्रकार ईश्वरपुरी ने चैतन्य महाप्रभु कृपा किया और कुछ दिन के लिए उधर रहे। और जैसे समय बीता गया एक ऐसा दिन आया तो महाप्रभु को उन्होंने दीक्षा दिया। एक दिन महाप्रभु वशिया निवृत्ते निज इष्ट मंत्र ध्यान लगीला करिते। जो 10 शब्दों का जो मंत्र है कृष्ण मंत्र है उनको प्रदान किया। और ध्यानानंदे महाप्रभु बाह्य प्रकाशिला करिते लगीला प्रभु रोधना दिखाया। कुछ समय के बाद जैसे महाप्रभु ने इस प्रकार दीक्षा को स्वीकार किया, उनके आंखों से मंत्र जप करने मात्र से उनके आंखों से प्राणाश्रुओं का धारा बहने लगी और एकदम बिल्कुल कृष्ण प्रेम की मदमत में मधोश में श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण रे बाप रे मोरो जीवन हरि रे कोनो देखे गेला मोरो प्राण हरि चोरी। हे चोर कहां गए कृष्ण, मेरे हृदय को छोड़ के कहीं कहां भाग गया, मेरे हृदय को चोरी करके कहां भाग गए। इस प्रकार एकदम बिल्कुल राधारानी के भाव में गोपियों के भाव में चैतन्य महाप्रभु अलग अलग प्रकार के बातों को कहने लगे। कुछ समय के बाद वो चैतन्य महाप्रभु जो है वो वापस आए नदिया, आने के बाद उनका कैसे हुआ, क्या व्यवहार हुआ भक्तों के साथ, किस प्रकार कुछ शिष्य उनके प्रेम के लक्षणों को नहीं समझ पाए, उसका वर्णन आगे चैतन्य भागवत वर्णन है। दूसरे शब्दों में ईश्वर परिपाद का आज तिरुभाव होने के नाते हमने ये जो लीला का चर्चा किया, इससे पता लगता है किस प्रकार महापुरुष स्वयं भगवान होने पर भी उन्होंने सारे जगत को ये रूल बताया। क्या बताया उन्होंने, ये हमको दीक्षा लेना चाहिए और कैसा लेना चाहिए उसका भी वर्णन हमको इस चैतन्य भागवत के प्रसंग में प्राप्त होता है। प्रभुपाद जी बार बार कहते करते थे, इवन व्हेन कृष्ण अपीयर्स इन दिस वर्ल्ड ही टेक शेल्टर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। स्वयं कृष्ण प्रकट होते उन्हें शांतिपुर में शिक्षा ग्रहण किया, तो ये जो शिक्षा या दीक्षा ग्रहण करने के द्वारा उसका परिणाम क्या होना चाहिए वो श्लोक याद कीजिएगा। क्या है वो, एवं ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं याश्यसि पांडव एन भूतान शेषानि द्रक्षसि। जब किसी को भी देखोगे, कोई वस्तु को देखोगे, क्या देखो, मई, कृष्ण ने कहा क्या करो, मई मतलब मेरा आकर के देखो, मेरा मतलब कृष्ण का, ये नहीं कि मेरा, इधर कृष्ण बोल रहे मेरा, मेरा मतलब कृष्ण का, तो ये कृष्ण का है। कोई परिस्थिति आता है, ये कृष्ण के वजह से ही परिस्थिति आया है तो इसमें रहेंगे। ये वस्तु क्या है, ये कृष्ण का है। अगर दुख मिलता है वो भी कृष्ण का है, वह सहन कर लेता हूं, सुख मिलता है वो भी कृष्ण का है, सहन कर लेता हूं। जैसे सुख को स्वीकार करते उसी को दुख को भी स्वीकार करो, जैसे मित्र को स्वीकार करते वैसे भी दुश्मन को भी स्वीकार करो। ये अस्तित्व में ये भक्ति का ये जो दिव्य गुण का जो वर्णन प्रहलाद महाराज ने कहा, ये कम से कम जो दीक्षा लेना चाहते हैं भक्त, कम से कम जो दीक्षा लिए हुए है, ये गुण को प्रकाशित करना अति आवश्यक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। कोई कमेंट?
हाँ, असुरी भाव और तामसिक भाव में कुछ फर्क है? असुरी भाव और तामसिक भाव दोनों सेम है कि अलग अलग है?
देखिए, इनका प्रश्न है कि असुरी भाव और तामसिक भाव दोनों एक ही है क्या? अस्तित्व में सत्व रजस तमा ये तीनों ही तमस है। सत्व रजस तमा ये तीनों तमस है, क्योंकि तीनों भौतिक है। तो उसके अंदर जो ज्यादा तमस है उसको तमस कहा जाता है, जो कम तमस है उसको रजस कहा जाता है, जो एकदम बिल्कुल हल्का तमस का प्रभाव रहता है उसको सत्व कहा गया है। लेकिन अस्तित्व में कहा गया है सत्वम रजस तम इति गुणान प्रकृति संभवान। ये प्रकृति का ही ये तीन गुण है, और प्रकृति क्या है वो तमस। इसलिए भगवद गीता में भगवान ने दो जगह कहा तमस परस्तात, ये तमोगुण, ये तमस मतलब भौतिक जगत ही तमस है, और भी अशुभात इन शब्दों के द्वारा कहा ये भौतिक जगत ही तमस है। इसके वजह से उसका आपको सूर्य की आवश्यकता है, चंद्र की आवश्यकता है। तो दिस मटेरियल वर्ल्ड इटसेल्फ इज नोन एज तमस। उसके अंदर जो सत्व रजस तमा जो है वो तमस का ही अलग अलग प्रकार के प्राकृति है। जब इस भौतिक जगत का प्रभाव एकदम बिल्कुल कैसा रहता है, जैसे गर्भ के अंदर बच्चा जैसा रहता है, उस प्रकार रहता है, एकदम बिल्कुल असहाय, तो उसको तमोगुण कहा गया है। जब वही तमस का प्रभाव इतना ज्यादा नहीं रहता है, कैसा, जो आईने के पर धूल के जैसा रहता है, तो उसको क्या कहा गया है, रजस कहा गया है। जब तमस का प्रभाव कैसे रहता है, जब अग्नि के ऊपर धुआं जैसा रहता है, उसको सत्व कहा गया है। फिर भी ये जो सत्व को ज्यादा महत्व दिया गया है, क्यों, क्योंकि सत्व में क्या होता है, अग्नि है और थोड़ा सा उसको कृष्ण भक्ति का प्रकाश मिले वो हट जाता है। इसलिए सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम ये शब्द इस्तेमाल किया गया पहले भागवतम का पहला स्कंद का दूसरे अध्याय में ये शब्द आता है, सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम, क्योंकि सत्व में ब्रह्म दर्शन भगवान का दर्शन होने का संभावना है। हाँ, संभावना है, ये बात समझना चाहिए। इसलिए सात्वगुणी व्यक्ति भी असुर हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं है। बात आपका प्रश्न आता हूं, ऐसा नहीं कि रजगुणी व्यक्ति हो सकता है, एक तमोगुण में हो और भक्त हो सकता है, एक सत्वगुण में हो और बड़ा असुर हो। जैसे मान लीजिए कोई कभी कभी हम देखिए हमारा संस्था तो सबके लिए खुला है कि नहीं, प्रभुपाद जी ने सबको ले लिया, तुम हिप्पी लोगों को ले लिया, वो तमोगुण क्या, तमोगुण बोलना भी बहुत अच्छा है, बड़ा डिग्री के जैसा समझ लीजिए, कुछ उसका कोई हद ही नहीं है, ऐसे लोगों को लिया, लेकिन फिर भी मंगला आरती आया, चैंटिंग किया, डांसिंग किया, सब उसको भक्त हो गया, ठीक है। लेकिन उसके अंदर एकदम बिल्कुल से बात करने लग जाओगे, व्यवहार देखो तो एकदम तमस निकाल रहा है। आप दक्षिण भारत से कोई ब्राह्मण परिवार में जाओ, कितना अच्छा बात करते हैं आपसे, बहुत सात्विक, एकदम सरल। लेकिन उनसे बात करो कृष्ण के विषय में, हाँ कृष्ण तो निराकार है, ऐसा कहने लगे, वो कौन है, सात्विक असुर है। एक तमसिक भक्त है, एक सात्विक असुर है, दोनों तमसिक भक्त अच्छा है। बात ये है। और कोई प्रश्न है?
एक जो बोल, अर्जुन तो दुश्मनी नहीं करना चाहता था कौरव से,
अगर
कृष्ण ने तो उसको फोर्स किया कि यू हैव टू,
बहुत अच्छा प्रश्न। तो अर्जुन जो है संभव रखता था, क्या रखता था, मैंने कहा था जितना व्यक्ति कृष्ण से संबंध के बिना समभाव को रखते हैं वो तमोगुण है। कृष्ण के संबंध के बिना समभाव को देखने का प्रयास तमोगुणी प्रयास है। तो इधर अर्जुन भी वो समभाव को देख रहा था, वो कह रहा था कि अरे ये सब तो मेरे परिवार वाले हैं और मैं कौन दुश्मन हूं, भले वो मुझे दुश्मन समझे, मैं तो उनका दुश्मन नहीं हूं, मैं तो मित्र का निभाना चाहता हूं। तो अर्जुन जो है उस समय अज्ञान में जो अच्छा ही होता है ना, वो उससे बढ़कर कोई बुराई नहीं है इस जगत में। अज्ञान में जो तथाकथित अच्छा ही होता है उससे बढ़कर कोई बुराई नहीं है। क्यों मालूम है? क्योंकि उसको लाख भी ज्ञान दो तो ही बोलते मैं तो अच्छा हूं, मैं तो अच्छा हूं। तो इसलिए अर्जुन का समस्या जो था, ही वॉज ए वेरी गुड इग्नोरेंट पर्सन। भगवदगीता में अर्जुन को भगवान ने पेश किया, इससे सभी लोग बहुत विचलित हो जाते, अर्जुन तो बहुत अच्छा था, कृष्ण ने पॉलिटिक्स करके उसका दिमाग खराब कर दिया है कि नहीं। लेकिन समस्या जो है अच्छाई बुराई में नहीं है, समस्या जो है वो व्यक्ति कृष्ण का बात मान रहा है कि नहीं। तो इसलिए भगवत चैतन्य महाप्रभु रामानंद संवाद में ये स्पष्ट रूप में कह दिया चैतन्य महाप्रभु ने, यही भाल यही मंद यही सब भ्रम, हाँ ये क्या है, ये बाल ये अच्छा है ये बुरा है ये सब भ्रम है, जो सात्विक है तमसिक है, ये तो अच्छा है ये तो बुरा, ये तो भ्रम है। बात है। और कोई प्रश्न है? नहीं।
हरे कृष्ण।
कहाँ से?
हरे कृष्ण, क्षमा करना, माफी चाहता हूँ। पहले आपने बताया कि सबको समभाव से देखना चाहिए,
बराबर
कहना तो बहुत आसान है प्रभु जी,
मैंने यही बात भी कहा था,
कहना बहुत आसान है, लेकिन जब आचरण में लाना, आपकी बात अलग, लेकिन मेरी बात बताओ और लोग बात, आचरण में हम नहीं ला सकते, जरा हमको तो कोई पोस्ट मिल गया।
एक प्रश्न है, आपने कहा कि हम नहीं ला सकते, लेकिन मेरा प्रश्न है कि लाना चाहते हैं कि नहीं?
लाना तो चाहते हैं।
नहीं ला सकते स्टेटमेंट है, ठीक है, लेकिन प्रश्न होना चाहिए कि मेरा प्रश्न है कि लाना चाहते हैं कि नहीं?
जी, लाना चाहते हैं।
आपने ऐसा जनरल स्टेटमेंट दे दिया सबके बिहाफ, नहीं हो सकता।
हम प्रयास करते हैं प्रभु जी, लेकिन हम नहीं ला सकते, इसलिए भगवान ने कहा
नहीं ला पाते।
तो इसके लिए क्या करना चाहिए? भगवान ने बताया कि मन मनाभो मत भक्तो मज्जाभिमानोऽस्तु, कि आपका मन मुझे दो और मुझे नमस्कार करो, लेकिन प्रयास करते लेकिन नहीं होता, वो क्या करना चाहिए?
पहली बात क्या है, जानना चाहिए कि समभाव है क्या। अभी उन्होंने एक अर्जुन का बात उठाया था, समभाव, अर्जुन समभाव था लेकिन कृष्ण ने उनको डाल दिया है तुम्हारा दुश्मन है इसको मारो, है कि नहीं। तो सिद्धांत के आधार के ऊपर, शास्त्रों के आधार के ऊपर, गुरु का शिक्षाओं के आधार के ऊपर ये जानना चाहिए समभाव है क्या, पहली बात। उसके बाद उसको लाने का प्रयास के विषय मैंने कहा था, जब तक साधना बहुत अच्छी तरीके से ना हो, दूसरा शास्त्रों का अध्ययन, क्योंकि साधना के द्वारा आपको शास्त्रों का अध्ययन करने की शक्ति प्राप्त होता है, क्योंकि शास्त्रों में प्रत्येक श्लोक, कोई भी श्लोक खोलिए उसके पीछे समभाव की बात रहेगा ही रहेगा ही। आप पृष्ठ की सुंदरता का श्लोक खोलिए या इस जड़ वस्तु का तीनों गुणों का संसर्ग की वजह से जगत चल रहा है उसकी वो श्लोक लीजिए, सारे श्लोकों के पीछे एक ही बैकग्राउंड है। जैसे कोई होता है ना, कोई चित्र आपने रचना किया, वो चित्र के पीछे एक बैकग्राउंड होता है, वो बैकग्राउंड वाला सिद्धांत क्या है? समभाव। समभाव क्यों? क्योंकि शास्त्र में कहा गया एकमेव द्वितीयम ब्रह्म, ये वेद का वाक्य है, एकमेव द्वितीयम ब्रह्म एक ही है, तो समभाव तो है ही, सृष्टि के पहले भी है, सृष्टि के समय भी है, सृष्टि के बाद भी है। इसलिए हम एवासमेव अग्रे, आप कुछ भी श्लोक देखिए ये समभाव तो है ही। इसलिए शास्त्र का अध्ययन की कमी की वजह से हमको समभाव क्या है मालूम नहीं पड़ता है, मालूम पड़ भी गया तो भी हम उसको आचरण में नहीं ला सकते। इसलिए हम देखते हैं जो शास्त्र का अध्ययन करता है वो भक्त के पास समभाव कैसे क्या है और कैसे उसको आचरण में लाना उसका बुद्धि रहता है। बड़ी सबसे बड़ी बीमारी यही है कि हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते। शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे तब शुरू हो गया ये मेरा है, ये मेरा, हाँ ये मेरा भक्त है। एक व्यक्ति ने कहा प्रभु जी मेरा भक्त है। बाप रे बाप, ये तो बहुत डेंजरस बात है कि नहीं? हाँ बाप रे, वापस मैं पूछा क्या कहा आपने, तो पुत्र शर्मा गया, प्रभु जी ये मैंने उसको भक्त बनाया है। अच्छा, मैं पूछा वापस देखा कि क्या कहा तुमने, क्यों? क्योंकि ही डजंट रीड ममी वाम शो जीव लोके जीव भूत सनातना। हाउ डिड यू मेक मी डिवोटी, भगवान ने पहले से कहा ना कि ममी वाम शो, ये मेरा भक्त है, व्हाट इज व्हाट डिड यू प्रीच, मन मना भव मद भक्तो। सो दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम, ये बहुत ही गहरा समस्या है कि हम पढ़ते नहीं। प्रभुपाद इतना समय इतना दिया का शास्त्रों के रचना के लिए क्यों किया? क्योंकि हम पढ़े, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? आई एम नॉट गोइंग ओवर टाइम ना, आई कैन स्टॉप।
भाई जी, अभी इतना डिस्कशन चल रहा है संभाव पे, हमें बचपन से स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, फ्रैटर्निटी लिबर्टी इक्वालिटी। एंड फिर आपने बताया कि भौतिक लेवल पे जितना हम संभाव रखेंगे उतना ज्यादा इनइक्वालिटीज आती हैं।
बराबर,
तो इसको किसी प्रैक्टिकल एग्जांपल से थोड़ा और इलैबोरेट कर सकते
हैं। बार बार यूनाइटेड नेशंस के एग्जांपल दिया, यूनाइटेड मतलब एक, वसुधैव कुटुंबकम, सारा जगत को एक रूप में देखना। लेकिन प्रभुपाद ने बहुत अवहेलना कर, अवहेलना नहीं सरकास्टिकली उन्होंने कहा कि व्यंग भाव से कहा उन्होंने कि एवरी टाइम यू फाइंड ए न्यू फ्लैग इन यूनाइटेड नेशंस, है कि नहीं? क्यों? आप जितना प्रयास करोगे भौतिक दृष्टिकोण में एकत्व को लाने का उतना वो विभाजन हो रहा है। अभी पहले तो कम से कम सब साथ, चारों पांच भाई जो है सब साथ में रहते, अभी एक परिवार वाला साथ में नहीं रहता है, ठीक है? बिकॉज दे सी डिफरेंट, दे डोंट इवन सी, एक फैमिली, हम एक परिवार के पति पत्नी दो बच्चे, वो भी एक उनके अंदर भी एकत्व नहीं है, उनके अंदर भी समभाव नहीं है, हम सब एक परिवार के हैं, वो भाव नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम सब समान हैं। ध्यान रखिए, मैं ये विषय में जाना नहीं चाहता हूं लेकिन आपने प्रश्न पूछा इसलिए जा रहा हूं। क्यों? पहले पांच भाई या दस भाई साथ में घर में रहते थे, सब समभाव से रहते थे, लेकिन एक भाई का परिवार यानी एक व्यक्ति का परिवार, पति पत्नी बच्चा दो बच्चा, वो समभाव से भी रह नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि वो सबको समान सोचते हैं। पत्नी सोचती है मैं पति का समान हूं, पति सोचता है कि मैं पत्नी का समान हूं, बच्चा सोचते है आप कौन होते, हम भी समान हैं, समझ रहे ना? अगर पति पति जैसा रहे, पत्नी पत्नी जैसा रहे, बच्चे बच्चे जैसा रहे तो समभाव आता है, ठीक है नहीं? यानी देर कैन बी इक्वालिटी ओनली वेन समबडी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन इज द रियलिटी, है कि नहीं? जैसे एक गाड़ी है, कार जो है कार है, पहिया का भी महत्व समान है, स्टीयरिंग का भी महत्व समान है, इंजन का भी महत्व समान है, तो समता की बात हो रहा है, उसका महत्व का समता की बात हो रहा है, उनकी कर्तव्यों की समता की बात नहीं हो रही है, उन कर्तव्यों का उद्देश्य का समता की बात हो रही है कि नहीं। जैसे सारे भक्त समान हैं, समान किस रूप में है, पुजारी भी कृष्ण का सेवा करेगा, प्रेसिडेंट भी कृष्ण का सेवा कर रहे हैं, जो फंड कलेक्टर भी कृष्ण का सेवा है। समता कृष्ण की वजह से आया है, नहीं तो उनकी प्रकृति की वजह से नहीं है। जो प्रकृति के स्तर में समता को लाने के प्रयास करना, पुजारी और प्रेसिडेंट दोनों समान है। मान लो कोई गेस्ट आया, पूजा छोड़ के आ सकता है, नहीं कर सकता है कि नहीं, उसमें समता नहीं है। तो इसलिए जो भेद में एकत्व को देख सकता है, एकत्व में भेद को देख सकता है, वो व्यक्ति जो है वो ज्ञानी है। यहां पश्येत सपश्यति, यहां पश्यति सपश्यति, क्या देख सकता है, जो शरीर के अंदर आत्मा को, और यही जो परमात्मा है सभी शरीरों में है, यह पश्यति जो देखता है वो सच में देख सकता है। सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु मतलब सारे जीव अलग अलग है लेकिन सब जीवों में कौन है, समम सर्वेषु तिष्ठन्तम्, समान भाव से भगवान बैठे, इसलिए कृष्ण के बिना समभाव हो ही नहीं सकता। तो भक्तों के बीच में भी जो क्लेश क्यों है, मैं भी इसके बराबर हूं, मुझका क्यों दिया, मैं भी क्यों, क्योंकि भूल जाते हैं कि हम सबको जोड़ने वाला कृष्ण है। द मोमेंट यू ब्रिंग कृष्णा देन ओनली इक्वालिटी इज देयर, विदाउट कृष्णा दे कैन नॉट बी इन इक्वालिटी बिकॉज दे ट्राई टू एक्ट इक्वली, दे कैन नॉट बी इक्वालिटी। लेकिन ठीक है, हाँ आपका प्रश्न है,
तो जी भगवान का नाम मुरारी क्यों है फिर, मुरारी
भगवान का नाम
मुरारी, द एनिमी ऑफ मुरारी मैन,
इनका प्रश्न का थोड़ा पीछे सिद्धांत यह है कि भगवान का नाम तो मुरा नामक राक्षस का दुश्मन है फिर है कि नहीं, इसलिए क्योंकि मुर ने कृष्ण को असुर के रूप में देखा, मुर नामक राक्षस ने कृष्ण को असुर के रूप में देखा, लेकिन कृष्ण ने क्या किया, उनको मार के उद्धार किया, कृष्ण ने उनको मित्रता ही दिखाया। कृष्ण के पास एक चीज नहीं है, वह द्वेष, इसलिए वो एक चीज है जो भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते, काम कृष्णार्पणे, क्रोध भक्त भक्त द्वेषी जने, लोभ लोभ जो है भक्त संग कृष्ण कथा, वैसे हर चीज को कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं, लेकिन एक है द्वेष जो हम कृष्ण की सेवा में नहीं लगा सकते, क्योंकि वो कृष्ण के पास नहीं है, क्यों, कृष्ण से प्रेम से परिपूर्ण है। लेकिन शास्त्र में कहा गया है, यो विदधाति कामान नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, यो विदधाति कामान, जीवों की कामनाओं को पूर्ण करते भगवान। लेकिन कुछ ऐसे जीव है जैसे मुर और इत्यादि राक्षस, वो चाहते हैं कि भगवान भी उनसे द्वेष करे, जो नहीं कर सकते, तो भगवान क्या करते हैं, इनका इच्छा तो पूरा करना है, इसलिए उनको ऐसा ड्रामा करते हैं कि सारा जगत को पता लगे कि मैं उनसे द्वेष करता हूं। देखिए विरोधाभास है कि नहीं, क्योंकि एक जगह भगवान ने कहा कि यो विदधाति कामा, मैं सारे जीवों को कामना पूर्ण करता हूं। जब कोई जीव कामना करता है भगवान मुझसे द्वेष करे, जो नहीं कर सकते, तो भगवान क्या करेंगे, मैं द्वेष करता हूं करके नाटक करते हैं, ही एक्ट एज ए फीस एनवियस, नटो नाट्य दरो यथा, लोग पहचान नहीं पाते, तो ऐसा भगवान ये करते, ही एक्ट एज ए फीस एनवियस। इसलिए जो सातवां स्कंद का मूल बात यह है कि इक्वालिटी, द लॉर्ड इज इक्वल टू वन एंड ऑल, पहला अध्याय वही है, और ये जो सातवां स्कंद का प्रश्न जो है परीक्षित महाराज का, समशील सुहृद सम प्रिय सुहृद ब्रह्मन, ये यही श्लोक है, सम प्रिय सुहृद ब्रह्मन भूतानाम भगवान स्वयं इंद्रस्यार्तिकतम दैत्याम अविदत विषमो यहा विषमो यथा, ये प्रश्न है सर विषमो यथा। और उसका जवाब देते हुए नारद जी ने, परीक्षित महाराज ने जवाब दिया, को सुखदेव गोस्वामी ने जवाब दिया, जगत जगत इस प्रश्न जो है और अच्छी तरीके से वर्णन नारद ने युधिष्ठिर को कहा, तो युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछा था नारद जी से, क्या प्रश्न था? प्रसंग अभी रासु यज्ञ है, सभी लोग है, देवता है, सारे ऋषिगण है, सब लोग, और उधर नारद जी ने से युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछा, अरे शिशुपाल को भगवान ने मारा और शिशुपाल की आत्मा जो है वो भगवान के अंदर प्रवेश किया, मुक्ति प्राप्त हुआ? जो भगवान को गाली देने वाले को मुक्ति प्राप्त हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान को जो गाली देते हैं, कृष्ण को जो गाली देते हैं, उनका मुख में तो पूरा वो लेप्रसी आ जाना चाहिए। तो ये जो शिशुपाल है, कृष्ण को गाली देने के बाद मुक्ति हो, ऐसा कोई प्रोसेस है क्या? कृष्ण को खूब गाली देते तो मुक्ति मिल जाता है? अगर ऐसा कोई प्रोसेस है तो वेण ने भी गाली दिया था भगवान को, तो वेण को नरक क्यों मिला? शिशुपाल ने भी भगवान को गाली दिया और वेण ने भी भगवान को गाली दिया, शिशुपाल को मुक्ति प्राप्त हुआ, शरीर साहुज मुक्ति प्राप्त हुआ और ये वेण को नरक प्राप्त हुआ। तब उसका जवाब में नारद जी ने कहा, परीक्षित, जब शिशुपाल ने गाली दिया था ना, बड़ा दिल से गाली दिया था, राइट फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट ही, बड़ा कृष्ण ऐसा वेण ने ऐसा किया था, इससे उनका जो कृष्ण के प्रति जो तन्मयता है, नेगेटिव तन्मयता है, और उससे गाली का जो नेगेटिव इफेक्ट है उसका दबा के उनको क्या हो गया, वो न्यूट्रलाइज होके वो मुक्ति को प्राप्त किया, है कि नहीं? तो ये जो भगवान समान है, और इसके लिए एक बहुत जड़ंत उदाहरण है, किसका? सूर्य का। क्या वो सूर्य क्या करता है? कोई व्यक्ति कहता है सूर्य मेरा दुश्मन है, चोर कहता है, और सज्जन व्यक्ति उसको उसी सूर्य को मित्र कहता है, दुश्मन चोर जो है उसको दुश्मन कहता है, और एक व्यक्ति जो अंधा है, सूर्य उदय हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? ठीक, इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल। लेकिन सूर्य जो है सबके लिए समान। तो मुरारी कृष्ण का नाम है, जो कृष्ण को दुश्मन मानता है वो मुर है, क्योंकि मुर ने कृष्ण को दुश्मन माना, इससे कृष्ण का नाम क्या पड़ा? मुरारी। ठीक है, ग्रंथराश्रमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, ईश्वर परिपाद की चाह।